My beloved brothers and sisters, this morning I wish to speak to you of eternal
शाश्वत सच्चाइयों के बारे में बताना चाहता हूँ. वो सच्चाइयाँ जो जीवन संपन्न करेगी और घर सुरक्षित पहुँचाएगी. जेट विमान इसके मूल्यवान इंसानों को माल को तेजी से द्वीपों और समुद्रों के पार पहुँचाती है ताकि लोग अपने व्यावसायिक बैठकों पर पहुँच पाए और छुट्टी मनाएं, रिश्तेदारों से मिले. हर जगह रास्ते, हाईवे, फ्रीवे और मोटरवे, लाखों गाड़ियां जिनमें लाखों लोग, लगता है जैसे एक निरंतर धारा, लाखों कारणों के लिए वो जल्दी जल्दी अपना व्यवसाय हर दिन करते हैं. इस तेज रफ्तार की जिंदगी में हम कभी रुक कर सोचते हैं शाश्वत सच्चाइयों के बारे में? शाश्वत सत्य की तुलना में दैनिक जीवन के सवाल और चिंताएं तुच्छ हैं. हम भोजन के लिए क्या खाएं? हम लिविंग रूम का कौन सा रंग लगाएं? हम जॉनी को फुटबॉल खेलने भर्ती कर दें? कब जब संकट के समय आता है, हम कई प्रजाजन घायल होते हैं. ये सवाल और अनेक सवाल तुच्छ बनते हैं. जब तंदुरुस्त घर में बीमारी आती है, जब जीवन की ज्योति मंद होने लगती है, हमारे विचार तुच्छ बातों को छोड़कर सचमुच महत्वपूर्ण बातों पर केंद्रित होते हैं. हाल ही में एक औरत से मिला जो एक खतरनाक बीमारी से सालों से उलझ रही थी. उसने कहा कि बीमारी से पहले उसका जीवन मामूली कार्यों से मशगूल था, जैसे घर सफाई और बढ़िया चीजों से सजाना. वो अपने केश सजाने हफ्ते में दो बार जाती थी और महीने में कपड़े खरीदती थी अलमारी भरने के लिए. सिर्फ कभी कभी कभार वो पोतों को बुलाती थी क्योंकि उसे चिंता थी कि वो कीमती चीजें उसकी टूट जाएंगी उनके लाभ परवाह छोटे हाथों से.
And then
फिर उसे चौंकाने वाली खबर मिली कि उसकी जान खतरे में है और उसे यहाँ बहुत कम समय बचा है. उसने कहा जिस क्षण उसे वो रोग निदान मिला, उसे पता पड़ा कि जो वक्त बचा है उसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ बिताना चाहिए, सुसमाचार पर जीवन केंद्रित करते हुए, क्योंकि वे बातें उस सब से ज्यादा अजीज थी. स्पष्टता की इस तरह के क्षण हम सभी के कभी न कभी आते हैं. हालांकि शायद इस नाटकीय तरीके से नहीं आते, हम साफ देखते हैं कि हमारे जीवन की महत्वपूर्ण क्या है और कैसे जीना चाहिए. उद्धारकर्ता ने कहा, अपने लिए धरती पर भंडार मत भरो क्योंकि उसे कोड़े और जंग नष्ट कर देंगे और उसे चोर चुरा सकते हैं, बल्कि अपने लिए स्वर्ग में भंडार भरो जहां उसे कोड़े या जंग नष्ट नहीं करेंगे और चोर भी नहीं चुरा लाएंगे. क्योंकि जहां तुम्हारा भंडार रहेगा वहीं तुम्हारा दिल भी रहेगा. सबसे गहरे चिंतन की जरूरत के समय आदमी की आत्मा स्वर्ग से पूछते हैं जिंदगी के बड़े सवाल का दिव्य जवाब पाने, हम कहां से आए, हम यहां क्यों हैं, इस जिंदगी के बांध क्या हो गए. इन सवालों का जवाब किताबों के बंधों के पन्नों के बीच हम नहीं पाएंगे, ना ही इंटरनेट खोजते हुए उसे पाएंगे. ये सवाल इस निश्वर जीवन के पार है. ये शाश्वत काल के बारे में है. हम कहां से आए, ये सवाल कोई ना सभी कभी ना कभी पूछते हैं। धर्मदूत पौलुस ने एथेंस में मार्स हिल पहाड़ पर कहा कि हम परमेश्वर के बच्चे हैं। हम जानते हैं कि हमारे शरीर हमारे नश्वर माता पिता ने पैदा किए हैं। हम पौलुस के शब्दों पर गौर करना चाहिए। प्रभु ने कहा है, आत्मा और शरीर आदमी की रूह है, तो आत्मा परमेश्वर की संतान है। इब्रानियों के लेखक ने उसे हमारे आत्माओं का पता कहा है। सभी इंसानों को की आत्माएं उनकी वाकई में पुत्र और पुत्रियां हैं। हम नोटते हैं कि प्रेरित कवियों ने हमारे सोच विचार के लिए इस विषय पर हृदयस्पर्शी संदेश और उत्कृष्ट विचार लिखे हैं। विलियम वर्ड्सवर्थ ने ये सच लिखा, हमारा जीवन एक नींद और भूलना है। ये रूह जो हमारे साथ उठती है, हमारे जीवन का तारा, कहीं और बनाया गया है और दूर से आता है, पर सब कुछ भूलकर नहीं, पर पूरे नंगेपन में नहीं, पर महिमा के अनुगामी बादलों के साथ, परमेश्वर से जो हमारा घर है। स्वर्ग हमारे बचपन को घेरता है। माता पिता अपनी जिम्मेदारी पर गौर करते हैं, उसे सिखाने, प्रेरणा, निर्देशन और मिसाल देने। जैसे माता पिता सोचते हैं, बच्चे खास तौर पर युवक यह गहरा सवाल पूछते हैं, हम कहां से आए हैं? अक्सर ये चुपचाप दिल से पूछा जाता है। हम कितने आभारी हैं कि एक विवेकी निर्माता ने पृथ्वी बनाई और हमें यहाँ रखा। पिछले जीवन को कैसे जैसे एक घूंघट के पीछे भुलाते, ताकि हम परीक्षण के समय से गुजर पाए और हमें मौका मिले अपने आप को साबित करने। परमेश्वर ने हमारे लिए तैयार की हुई बातों के योग्य बने। जाहिर है, पृथ्वी पर रहने का एक मुख्य वजह है मांस और हड्डियों का शरीर पाना। हमें चुनाव करने का उपहार दिया गया है। हजार तरीकों से हम चुनाव करने भाग्यवान हैं। हम अनुभव के कठिन दरोगा से सीखते हैं। हम भलाई बुराई पहचानना सीखते हैं। हम कड़वे और मीठे के अंतर सीखते हैं। हम पहचानते हैं कि हमारे कर्मों के नतीजे होते हैं। परमेश्वर के आज्ञा पालन से हम उस घर के योग्य बन सकते हैं जिसकी बात यीशु ने की थी, जब उसने कहा, मेरे पिता के घर में कई महल है, मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ, ताकि जहाँ मैं रहूँ वहाँ तुम भी रहो। हम जवानी में महिमा के अनुगामी बादलों के साथ आते हैं, पर जिंदगी निष्ठुर ढंग से बढ़ती है। बचपन के बाद जवानी आती है और बौढ़पन चुपचाप आता है। जिंदगी की राह से गुजरते हुए अनुभवों द्वारा हम स्वर्ग की और सहायता के लिए अर्ज करते हैं। परमेश्वर हमारे पिता ने, यीशु मसीह हमारे प्रभु ने सिद्धता का की राह स्पष्ट की है, हमें बुलाया है शाश्वत सच पाने और सिद्ध बनने जैसे वो सिद्ध हैं। धर्मदूत पौलुस ने जीवन की तुलना दौड़ से की है। इब्रानियों से उसने कहा, हम झटक दें घिरने वाले पापों को और धीरज दे हमारे सामने का दौड़े। हमारे उत्साह में हम शुभोपदेशक की सलाह नजरअंदाज न करें और दौड़ हमेशा तेजी से नहीं या शक्ति से नहीं जीती जाती। वास्तव में अंत तक कायम रहने वाला जीतता है। जब मैं जिंदगी की दौड़ के बारे में सोचता हूँ, मुझे बचपन की एक दौड़ याद आती है। मेरे दोस्त और मैं हाथ में छुरियां लेकर कोकर विलो पेड़ की नर्म लड़की की छोटी छोटी नावें बनाते थे। त्रिकोणी आकार के कापस से पाल लगाकर हम उन नावों को प्रोवो नदी के अशांत पानी में दौड़ लगाते थे। हम नदी के किनारे से दौड़ते और उन छोटी छोटी नावों से उस प्रवाह तेज प्रवाह में ऊपर नीचे जाते नाचते और कभी गहरे पानी में शांति से जल यात्रा करते हुए देखते। एक दौड़ के समय हमने देखा कि एक नाव सभी नावों के आगे अंतिम रेखा की ओर जा रही थी। अचानक प्रवाह एक बड़े भौरे के करीब ले गया, नाव को एक मुड़ी और उल्टा उलट गई। वो गोल गोल घूमती हुई फिर मुख्य प्रवाह में लौट नहीं पाई। आखिर वो अपने टूटे फूटे भागों के साथ कई से घिरी घिसी पिटी रुक गई। उन खेल की नावों में स्थिरता के लिए उलटना नहीं था, ना ही रडर दिशा देने शक्ति का स्रोत भी नहीं था। अनिवार्य उनकी दिशा का प्रवाह की ओर था सबसे कम विरोध का रास्ता। खोल की नावों के विपरीत हमें दिव्य गुण दिए गए हैं यात्रा में निर्देशन देने। हम जीवन की धारा के साथ बहने पर विचार करने की और मंजिल पहुंचने की शक्ति के साथ आए हैं। हमारे स्वर्गीय पिता ने हमें शाश्वत यात्रा में सुरक्षित लौटने का साधन के साथ ही भेजा है। मैं प्रार्थना की बात करता हूँ, इस शांत स्थिर आवाज की बात करता हूँ। हमें पवित्र धर्मशास्त्र नजरअंदाज नहीं करने चाहिए, ना ही जिनमें प्रभु और पैगंबरों के संदेश हैं। ये संदेश अंतिम रखा पार करने हमें सहायता देने के लिए हैं। हमारे नश्वर जीवन के में आएंगे वो गलती के कदम, वो फीकी हंसी, वो बीमारी का दर्द, वो गर्मी का भागना, शरद ऋतु का पास आना, वो सर्दी की सर्द और वो अनुभव जिसे हम मौत कहते हैं। इस विचारशील व्यक्ति ने सवाल पूछा होगा जो अय्यूब ने पूछा, अगर आदमी मरेगा क्या वो फिर जिएगा। मन से निकालने की हम जितनी भी कोशिश करें वो लौटता है। मौत सभी को आती है, वो बूढ़ों को आती है जैसे वो दुर्बलता के कदम उठाते हैं, वो उन्हें भी आती है जो जीवन की राह के बीच हैं। अक्सर छोटे नन्हा बेटे की हंसी चुप करते हुए, पर मौत के बाद जीवन का क्या? क्या मौत सभी का अंत है? रॉबर्ट ब्लैचफोर्ड ने उसकी किताब परमेश्वर और मेरा पड़ोसी में ईसाई विश्वासों पर आक्रमण किया, जैसे परमेश्वर, यीशु, प्रार्थना और अमरता। उसने जोर दिया कि मौत अस्तित्व का अंत है और कोई भी कुछ और साबित नहीं कर सकता। फिर आश्चर्यजनक बात हुई, संदेह की दीवार मिट्टी में मिल गई। वो बिना सहारे रह गया। धीमे धीमे वो उस विश्वास की ओर लौटा जिसकी उसने हंसी उड़ाई थी। उसका दृष्टिकोण क्यों बदला? उसकी पत्नी का देहांत हुआ। टूटे दिल से वो कमरे में गया जहां उसका प्रेत पड़ा था। उसने उस चेहरे की ओर देखा जिससे उसने प्यार किया था। बाहर आते हुए उसने दोस्त से कहा, वो वही है अब नहीं भी, सब बदल गया है, कुछ पहले था जो अब नहीं है, वो बदली है। क्या चला गया था? उसकी रूह चली गई थी और क्या। बाद में उसने लिखा, मौत वो नहीं जो लोग सोचते हैं, वो दूसरे कमरे में जाने के समान है। उस दूसरे कमरे में हम पाए गए वो प्रिय पुरुष औरतें बच्चे जो हमने खोए हैं। मेरे भाइयों और बहनों, हम जानते हैं कि मृत्यु अंत नहीं है। ये सच्चाई जीवित पैगंबरों ने सदियों से सिखाई है। ये हमारे पवित्र धर्मशास्त्रों में पाई जाती है। मोर्मन की किताब में हम ये आरामदायक शब्द पढ़ते हैं। अब रोहो की मौत के मृत्युत्थान के बीच स्थिति के बारे में देखो, मुझे देवदूत द्वारा पता पड़ा है कि आदमियों की आत्माएं जैसे इस नश्वर शरीर से निकलती है, सभी आदमियों की आत्माएं चाहे अच्छी हो या दुष्ट घर उस परमेश्वर के पास जाती है जिसने उन्हें जन्म दिया। फिर ऐसा होगा कि वो आत्माएं जो नेक है वो खुशी की जगह स्वीकार की जाएगी जिसका नाम स्वर्ग है, और विश्राम और शांति की जगह जहाँ वो परेशानी और दुख दर्द से आराम पाएंगे। मुक्तिदाता के क्रूस पर चढ़ने के बाद शरीर के कब्र में 3 दिन रहने के बाद आत्मा फिर लौट आई। पत्थर निकाला गया और पुनरुत्थान किया हुआ मुक्तिदाता बाहर चला, मांस और हड्डी की अमर शरीर पहने। अय्यूब का सवाल, अगर आदमी मरे तो क्या वो फिर जाएगा, का जवाब है, जब मरियम और साथी कब्र पहुंचते चमकते वस्त्र पहनते आदमियों को देखा, जीवित को बूंदे को मत ढूंढो, वो यहाँ नहीं है, वो उठ गया। मसीह की मौत पर विजय के बाद हम सभी का पुनरुत्थान होगा, ये रूह की मुक्ति है। पौलुस ने लिखा, कुछ देह दिव्य होते हैं और कुछ पार्थिव, किंतु दिव्य देह का आभास एक प्रकार का होता है और पार्थिव शरीरों का दूसरे प्रकार का। हमारे दिव्य महिमा चाहिए, हम परमेश्वर की उपस्थिति में रहना चाहते हैं, हम शाश्वत परिवार में सदस्यता चाहिए। ये आशीष हम कमाते हैं जिंदगी भर प्रयास खोज पछतावे के बाद और आखिर सफलता पाकर। हम कहाँ से आए, हम यहाँ क्यों हैं, जीवन के बाद हम कहाँ जाएंगे, इन विश्वभर के सवालों का अब बिना जवाब रहने की जरूरत नहीं है। मेरे हृदय की गहराई से मैं बयान देता हूँ कि मैंने कही बातें सच्ची हैं। हमारे आज्ञा पालन पर स्वर्गीय पिता आनंदित होते हैं। वो खोए बच्चों के लिए चिंतित है, मंद किशोरी के लिए, भटके युवा के लिए, दोषी पालक के लिए। नम्रता से मसीह ने इनकी ओर सबूत से कहते हैं, लौट आओ, ऊपर आओ, अंदर आओ, घर आओ, मेरे पास आओ। एक हफ्ते में हम ईस्टर मनाएंगे। हम मसीह के जीवन पर गौर करेंगे, उसकी मौत और पुनरुत्थान पर। उसका खास गवाह होने के नाते मैं बयान देता हूँ कि वो जीवित है और हमारी विजयी लौटने के लिए उत्सुक है। हम विजयी लौटेंगे, ये प्रार्थना मैं यीशु मसीह हमारे मुक्तिदाता के पवित्र नाम में करता हूँ।
Our Savior and our Redeemer. Amen.
Amen.